તારીખ 22/6/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 210.
તો જ્ઞાનના પરિણમનમાં સમ્યકપણું અનેક પ્રકારે છે એ વિષય આપણે ચાલી ગયો. હવે દ્રષ્ટિ અથવા શ્રદ્ધાના પરિણમનમાં સમ્યક્ત અનેક રૂપે દેખાય છે એ વિષય છે. એમાં સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ સ્વરૂપના મહિમામાં લીન થઈ જાય છે. સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ મહિમાવંત સ્વરૂપમાં અત્યંત મહિમાને કારણે અભેદતા ભાવે અભેદતા રૂપ પરિણમન કરે છે. ભાવ અભેદતાનું પરિણમન કરે છે. એવું જે અભેદપણું છે એ દ્રષ્ટિનું સમ્યક્ત્વ છે. એક તો એ વાત ચાલે. પુનઃ અંતર્મુખ પુનઃ અનંત ગુણ સમૃદ્ધ પૂર્ણ પર્યાય મોક્ષ પર્યાય સિદ્ધ પર્યાય જિસમે અનંત ગુણ કી સમૃદ્ધિ વૃદ્ધિ સિદ્ધિ લબ્ધિ સબ પ્રગટ હો ગઈ હૈ. એસી જો સિદ્ધ પર્યાય મોક્ષ અવસ્થા ઉસકો ભી દ્રષ્ટિ વિષય નહીં કરતી હૈ. યાને જીસ પરમાત્મ તત્વ કો વિષય કરતી હૈ ઉસકો હી અપના સ્વરૂપ ગિનતી હૈ. બાકી સબકો પર મે ડાલતી હૈ ઉસમે મોક્ષ પર્યાય ભી આ જાતી હૈ. इस प्रकार से निज परम तत्व का आदर करने वाली दृष्टि है वो दृष्टि का सम्यकपना है. उस प्रकार का वो सम्यकपना है. दो बात हुई. अब तीसरी कि सम्यकत्व के और भी कुछ रूप है जो बताने लायक है दिखाने लायक है द्रष्टव्य है. व्यवहार का व्यवहार के स्थान में निषेध नहीं करना वह सम्यक है. ये जो जिनोक्त व्यवहार है जिस गुण स्थान में राग की मर्यादा हो जाती है कुछ स्तर को छोड़ करके नीचे का राग होता नहीं साधक को. दृष्टांत ले ले तो मुनिराज को चलते वक्त छोटे से छोटे प्राणी की दया रहती है तो नीचे देख करके चलेंगे. चलते वक्त इधर उधर नहीं देखेंगे. उसकी दृष्टि जमीन पर रहेगी और देख देख के अपने पैर रखेंगे. निरखी निरखी पग धरे पाले करुणा अंग आता है ते गुरु मेरे मन बसो. इरिया समिति बोलते हैं उसको शास्त्र परिभाषा में. ये व्यवहार इस प्रकार के व्यवहार को इरिया समिति कहते हैं. पांच समिति है. तीन गुप्ती है. पंच महाव्रत है. ये जो मुनि का व्यवहार है उसमें करुणांग उतना है कि वो देख के चलेंगे. बैठेंगे तो देख के बैठेंगे और छीटी मीटी हो तो मोर पीछ से साफ करके बैठेंगे. सोएंगे तो देख के सोएंगे. पेशाब करेंगे तो देख के. चटी जाएंगे तो देख के. किस कोई भी चीज उठा के रखेंगे तो भी देख के. उसको आदान निक्षेप संक्षेप समिति कहते हैं. तो ये सब प्रकार का जो व्यवहार है फिर भी कोई त्रुषातुर जीव को पानी नहीं पिलाएंगे. उसके कमंडल में पानी रहता है शौच के लिए, पट्टी जाते हैं पेशाब करते हैं हाथ पग और अंग साफ करने के लिए पानी रहता है, निर्दोष पानी, गर्म करके ठंडा किया हुआ ऐसा पानी ले लेते हैं जब आहार करने को जाते हैं तो गृहस्थी के वहाँ से, कच्चा पानी का उपयोग नहीं करते। फिर भी अगर कोई त्रिशातुर प्राणी है तो उसको पानी नहीं पिलाएंगे। निर्दयी नहीं है, फिर भी निर्दयी नहीं है, लेकिन एक ही दया का अंग में उनके दया के राग की सीमा है कि जिस सीमा में वो आरंभ समारंभ नहीं कर सकते। सर्वत्संग परित्याग होने के कारण से आरंभ समारंभ का त्याग कर दिया है, तो आरंभ समारंभ हुए ऐसे दया में नहीं कहेंगे, उस तरह का राग उसको आता नहीं है। क्या है तो नीचे के स्तर का आरंभ समारंभ के साथ दया का पालन करना, वो राग उसको नहीं आता है। गुणस्थान ऐसा है छठा सातवां, मंदिर जाएंगे, मंदिर जी में जाकर के दर्शन करेंगे भगवान का, लेकिन मंदिर बनवाएंगे नहीं, गृहस्थी बनेगा, सम्यक दृष्टि श्रावक ज्ञानी धर्मात्मा जिन मंदिर बनाएगा, मुनि नहीं बनाएंगे, और बनाने के लिए चंदा भी नहीं करेंगे, फंड वो नहीं इकट्ठा करेंगे, आरंभ समारंभ में वो नहीं पड़ते, उस प्रकार का राग उसको होता नहीं। नहीं करेंगे, आरंभ करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, करने वाले को सीधा बोलेंगे नहीं। ऐसे दान का जब अधिकार चलेगा तब बात आएगी, फिर श्रावक होते हैं इस प्रकार से जिन मंदिर कराते हैं, दान देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और जो कमाई होती है अकेले नहीं खाते। पद्मनंदी पंचमस्तु में कहाँ तक आया मालूम है कि जो कौवा होता है वो भी अकेला खाता नहीं, वो श्राद्ध के दिनों में फेंकते नहीं पूरी, हाँ पकौड़े और ये खीर वगैरह छत पे, तो अकेला कौवा नहीं खाएगा, वो का का करके सबको बुला के खाएगा। तो जो भी कमाई करके अकेला खाता है वो कौवा से गया बीता है। आचार्य उपदेश ऐसा देंगे दान के लिए, तो तुम्हारी जो संपत् ति है कमाई है उसमें से कम दसवां हिस्सा, आज तो 1% भी लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन दसवां हिस्सा, तो 20 लाख की कमाई है तो 2 लाख दान में देना, क्या शास्त्र में वो उपदेश है, लेकिन 20,000 देने में भी तकलीफ हो जाएगी, 20,000 ऐसा लगेगा। और लड़की का शादी होगा तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख ये चल जाएगा। तो उस प्रकार का उपदेश देंगे, व्यक्तिगत रूप में ऐसा नहीं कहेंगे कि डॉलर का मंदिर बना लो, ऐसा नहीं कहेंगे, वो बात नहीं करेंगे, इसकी मर्यादा है राग के, होता ही नहीं। तो व्यवहार के स्थान में व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे, जिस गुण स्थान में जैसा व्यवहार है उसका स्थापन करेंगे, और समय सार में भी वो किया है, निश्चय प्रधान ग्रंथ है, फिर भी 12वीं गाथा 45वीं गाथा सब में व्यवहार का स्थापन किया है आचार्य से, कि व्यवहार के स्थान में व्यवहार होना वो न्याय संगत है, यानी दूसरे जीवों की दया का पालन करना वो न्याय संगत है, हालांकि वस्तु स्वरूप से कोई बचा नहीं सकता, मार भी नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता, लेकिन मारने के परिणाम नहीं आए इसलिए बचाने के परिणाम जरूरी है वरना मारने के परिणाम आए बिना रहेगा नहीं। व्यवहार के स्थान में व्यवहार का निषेध नहीं करना ये सम्यक है, ये सम्यक्त्व का एक रूप है, और साथ ही व्यवहार का निश्चय के सामने निषेध करना, निश्चय के स्थान में निषेध करना वही सम्यक है। इसी का नाम जैन दर्शन का अनेकांत है कि व्यवहार के स्थान में व्यवहार का निषेध करना नहीं वही सम्यक है, और निश्चय के स्थान में वही व्यवहार का निषेध करना वो सम्यक है। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ऐसा ही है, इसके बिना निश्चय धर्म वितरागी धर्म प्रगट नहीं होता, व्यवहार के राग में फंस जाता है। तो उस मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है उसको प्रकट करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए और उसको वर्धमान करने के लिए, वृद्धिगत करने के लिए जो राग रूप व्यवहार है उसका निषेध किया गया है। क्यों कि व्यवहार का राग जो है वो भी वितरागता का घातक है। राग और वितरागता आपस में प्रतिपक्ष में है, विरोधी है। राग बलवान होगा वितरागता का घात हो जाएगा, वितरागता बलवान होगी राग का नाश हो जाएगा। इसलिए व्यवहार रूप राग रूप व्यवहार है उसका निषेध तत्शास्त्रों में किया है वो सम्यक है, वो सम्यक है। समीचार का 108 कलश उसी पर है, पुण्य पाप अधिकार का। मोक्ष हेतु तिरोधायित्वात् तत् निषिध्यते, मोक्ष के कारण को, मैंने मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कारण कौन है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष हेतु तिरोधायित्वात्, मोक्ष हेतु का तिरोधान करने वाला होने से तत् निषिध्यते, मैंने ये पुण्य का भी निषेध करने में आता है, ऐसा श्लोक है। इसलिए व्यवहार का निश्चय के स्थान में निषेध करना वह सम्यक है। पंचाध्यायी परमागम में व्यवहार के निषेध को ही निश्चय का स्वरूप नास्ते से बतलाया है। निश्चय का स्वरूप क्या है तो वो तो वचन गोचर है ही नहीं, निश्चय का स्वरूप वचन गोचर है नहीं, तो वचन अगोचर है। रूपी जीव के शुद्ध स्वरूपी के शुद्ध परिणाम वो वचन गोचर नहीं है, तो वस्तु भी वचन गोचर नहीं, उसके शुद्ध परिणाम भी वचन गोचर नहीं, तो नास्ते से बतलाना पड़ता है। न इति न इति, ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, उसको निश्चय कहता है। उस तरह से निश्चय का प्रतिपादन किया है पंचाध्यायी में, और वो न इति न इति न इति आया तीर्थंकर देव के ध्वनि में। तो वेदांत में ये बहुत प्रसिद्ध बात आई है, खास करके सांख्य मत में, कि जिसको श्रुति, वेदांत मैंने श्रुति बोल लेते हैं अपन, श्रुत ज्ञान कहते हैं वो, तो श्रुति कहते हैं। श्रुति जिसको नेति नेति करके पुकार करती है वही परम तत्व है बहुत प्रसिद्ध बात है उन लोगों में ये, कि श्रुति जिसको नेति नेति, मैंने न इति न इति न इति ऐसा पुकार करती है वही हमारा परम तत्व है, जो वचन अगोचर है। वो लोग ने वो बात पकड़ी है, जची है, और उसको मुख्य भी किया है, लेकिन वो बात भगवान के दिव्य ध्वनि में आई है। किसी ने कोई बात उठाई, किसी ने कोई बात उठाई, और अपना अपना पंथ चलाया।
समग्र रूप से सभी बातों को समझ करके अपने अपने स्थान में उसको रखना, स्वस्थान में उसको रखना, और तभी संतुलन रहता है, वरना संतुलन खो जाता है, आउट ऑफ बैलेंस बात हो जाती है, एकांत हो जाता है, तो मार्ग के जगह वो उन्मार्ग हो जाता है। हाँ, सभी ज्ञानी होते हैं, नास्ते से भी बात आती है, तो भगवान की वाणी में आई है तो ज्ञानी की वाणी में आएगी आएगी। मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं तिरियंत नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारक नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, सब आता है। द्रव कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, सब उनके सब भेद प्रभेद भी मैं नहीं हूँ, उससे सबसे भिन्न नायक स्वरूपी आत्मा हूँ। क्योंकि निश्चय, क्योंकि निश्चय इसमें थोड़ा फैक्स में बराबर नहीं उतरा है, निश्चय आत्मा का स्वरूप, निश्चय आत्मा वचन अगोचर है, ऐसा थोड़ा मालूम अनुमान करना पड़ता है, वहां यही अभिप्राय है। परंतु मोक्ष मार्ग में व्यवहार के स्थान में परंतु मोक्ष मार्ग में व्यवहार के स्थान में दोनों प्रकार के सम्यक प्रकार से निरूपण किया गया है, कोई बराबर कोई जिज्ञा न सही कर तब न उकले तो जो दो तीन शब्द परंतु मोक्ष मार्ग के स्थान में सद्भूत और असद्भूत दोनों प्रकार के व्यवहार का सम्यक प्रकार से निरूपण किया गया है। सद्भूत व्यवहार मैंने शुद्ध परिणमन को सद्भूत व्यवहार कहते हैं, और रागादि जो भाव हैं उन स्थान अनुसार पंचमावृत समिति गुप्ति वो असद्भूत व्यवहार है। असद्भूत मैंने स्वरूप का जिसमें स्वभाव भाव का अंश नहीं है उसको असद्भूत कहते हैं, क्योंकि राग स्वरूप में नहीं है और वितरागता स्वरूप में है, वो बार आई है, तो गुणस्थान अनुसार जो भी जितनी वितरागता है जितना शुद्ध परिणमन है वो सद्भूत व्यवहार है, और उसी स्थान में जो रागादि भाव की निश्चित सीमा है उसको असद्भूत व्यवहार कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग में दोनों प्रकार के व्यवहार का सम्यक प्रकार से निरूपण किया गया है जिन आगमों में। सद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार के स्थान में है, कोई वो अगुण स्थान अनुसार है, और उसको निश्चय मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, और असद्भूत व्यवहार को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, लेकिन आखिर में वो है व्यवहार, पर्याय होने से वो व्यवहार नहीं का विषय होने से उसको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार क्यों कहते हैं कि व्यवहार नहीं का वो विषय होता है, उसको जानने वाला जो ज्ञान का अंश है वो व्यवहार नहीं है, पर्यायार्थिक नहीं है। इस तरह से तो राग है वो जीव का परिणमन है, तो उसको अशुद्ध निश्चय कहते हैं, और वितरकता को शुद्ध निश्चय कहते हैं, दोनों को निश्चय भी कहते हैं और दोनों को व्यवहार भी कहते हैं। इसलिए वेदांत में जो बुद्धिमान लोग हुए उनको ये सब बात समझ में नहीं आई। तो उन लोगों ने क्या कहा कि हैं
शंकाशील
कि ये जो अनेकांत के बात अनेकांत की पद्धति जो है उसमें शंकाशील लोग हैं, जैन लोग हैं वो शंका में रहे हैं, उन लोगों ने अपना स्वरूप निश्चय नहीं किया, निश्चित नहीं किया कि ऐसा ही है। वो कहेंगे कि आत्मा एक भी है और आत्मा अनेक भी है, कहेंगे कि आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा शुद्ध भी है। तो एक है वो अनेक हो ही नहीं सकता और अनेक है वो एक हो नहीं सकता, ये तो पागलपन की बात है, ऐसा कहेंगे। एक को अनेक कैसे कहा जाता है, एक है वो एक है और अनेक है वो अनेक है।
तो, एक के लिए अनेक किया है ऐसा बात है, एक के लिए अनेक किया है, अनेक बोला है, एक दिखाने के लिए अनेक बोला है,
इसके
अनेक का तो उसको समझ में नहीं आता।
नहीं समझ में नहीं आता, वो बोला नहीं कि एक ही पर्याय को व्यवहार भी बोलते हैं और निश्चय भी बोलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय मोक्ष मार्ग कहेंगे और उसको सद्भुत व्यवहार कहेंगे, और रागादि भाव को व्यवहार भी कहेंगे और अशुद्ध निश्चय भी कहेंगे, क्योंकि जीव का परिणाम है। और प्रैक्टिकली वो बात बराबर इसलिए है कि एक ही एक आदमी एक मनुष्य पिता भी है और पुत्र भी है। अपना पिता के संबंध की अपेक्षा से देखा जाए तो वो पुत्र है, और अपने पुत्र के संबंध के हिसाब से देखा जाए तो वो पिता है, और दोनों एक ही समय में है, दोनों एक ही काल में पिता भी है और एक ही काल में पुत्र भी है। फिर भी पिता पुत्र 50-50% नहीं है, तो अपने पिता का पुत्र 100% है और अपना पुत्र का पिता भी 100% है, दोनों 100% है। ऐसे जिस अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप दिखाया जाता है वो 100% ऐसा ही है। जितनी भी अपेक्षाएं हैं उसमें 100% ऐसा ही है। तो व्यवहार में तो वो बात किसी को उत्पटांग नहीं लगती है, तो बराबर ऐसा ही होना चाहिए। इसमें कोई कहे कि नहीं ये तो इसका बेटा 50% है, क्या बोला तू मारेगा, वो नहीं चलेगा। आत्मा के सर्व गुणों का स्वरूपाकार परिणमता हुआ अंश, आत्मा के सर्व गुणों का स्वरूपाकार परिणमता हुआ अंश वह परिणमन का सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व का रूप कैसे कैसा होता है, तो परिणमन का सम्यक्त्व क्या है कि परिणमन स्वरूपाकार हो जाए वो, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सम्यक स्वरूप है। तो ऐसा ही परिणमन हुआ वो परिणमन का सम्यक हो गया। अनंत स्वसंवेदन पूर्वक आगे अनंत स्वसंवेदन पूर्वक परिपूर्ण अंतर्मुखता अभेद रूप से जिनेन्द्र परमात्मा में तीर्थंकर देव में दिखाई देना वह सर्वज्ञ का सम्यक प्रकार से वर्णन है। भगवान का वर्णन कई प्रकार से स्तुति करते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, अरियन तीर्थंकर जिनेन्द्र देव। वो जिनेश्वर देव का किस प्रकार से वर्णन करना कि अनंत स्वसंवेदन उसमें झलकता है, कैसे हैं? अनंत स्वसंवेदन, उसमें दिखाई देता है। स्वसंवेदन एक वेदन है और वेदन को देखने वाला वेदन में आ जाता है, ऐसा एक साइंस है दृश्य और देखने वाले के बीच में। अब प्रैक्टिकल देख लो कि रास्ते में एक पिल्लू कुत्ते का बच्चा है, कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, एक पिल्लू भी किसी गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट में टकरा गया और चिल्लाने लगा, दर्द होता है, पीड़ा पीड़ा होने से चिल्लाने लगा, इसका हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, देखने वाले को क्या होगा? दया है वो, दर्द है क्या है? अरे बेचारे को कितना लग गया हो, कितना चिल्लाता है, कितना दर्द होता होगा उसको, इतनी बड़ी गाड़ी के नीचे उसका पैर आ गया, कितना कोमल बच्चा है, कितना लग गया होगा। तो एक संसार का कोई प्राणी है, उसको दुख का वेदन होता है, देखने वाले को दुख पैदा कर देता है। तो भगवान का अनंत स्वसंवेदन देखने वाले को स्वसंवेदन क्यों नहीं आएगा? आएगा ही
आएगा।
यही कारण से हमारे परंपरा में, जैन परंपरा में जिनेश्वर की स्थापना का व्यवहार चला है। ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, श्रावक जो गृहस्थी होते हैं वो मंदिर बनाते हैं और भगवान की स्थापना करते हैं। क्यों? कि ये हजारों साल चलती है। जीवंत जिनेश्वर है वो तो आयु तक रहेंगे, बात तो समोसरण खाली होकर के वो चले जाएंगे सिद्धालय में, वो आयु पर्यंत विराजमान रहते हैं। लेकिन स्थापना जिस प्रतिमा की किया है उसमें आयु वायु का कोई फैक्टर लागू नहीं पड़ता, तो जहां तक उसका संरक्षण हुए वो वैसे की वैसे प्रतिमा का दर्शन होता है। तो उसमें जो अंतर्मुखता और स्वसंवेदन का भाव भगवान की मुख मुद्रा में दिखाई जाता है। क्योंकि जैसा जिनेश्वर है वैसी जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा जिन सार की, जैसा जिन है वैसे ही जिन प्रतिमा है। तो देखने वाले को स्वसंवेदन का प्रयोगात्मक प्रसंग है, इसलिए उनकी स्थापना का बहुत बड़ा महत्व धामधूम से वो प्रसंग किया जाता है। यही कारण है इसके पीछे तो बहुत महत्व है इसका। पहले तो जो श्रीमंत लोग थे वो अपने खर्च से ही जिन मंदिर बनाते थे, अभी फंड फाला का जमाना आ गया, अभी आप भी लाख रुपया लिखाइए, आप 50,000 लिखाइए, आप कितना भी लिखाइए, जिन मंदिर बनाने का है। घर में शादी के प्रसंग में फंड फाला नहीं होता है भगवान की स्थापना में फंड फाला होता है। ये काल दोष ऐसा हो गया, पहले के वो जमाने में नहीं था। जो भी श्रीमंत लोग थे वो खुद ही बना लेते थे, अपने खर्च से जिन मंदिर बना लेते थे। ऐसी पद्धति थी। तो जो भी पैसे वाले हैं वो जिन मंदिर बना देगा और समाज को समर्पण कर देगा, बना करके समाज को समर्पण कर देगा। आप लोग उसको सुरक्षा करो, उसको मेंटेन करो और आप उसका लाभ लो, सारी समाज उसका लाभ। मेरा जिन मंदिर है वो बात नहीं है, खुद की संपत्ति में से बनाया हो तो भी मेरा है वो बात नहीं है। तो जिन मंदिर किसका है? कि जिस भगवान को विराजमान किया उसका है, और वो वितरा गए क्या है?
सौभाग्य का ही हो गया।
तो मतलब उसको उसको वो नहीं है कि मेरा है। हम कहेंगे कि ये महावीर भगवान का मंदिर है। हम क्या बोलेंगे? ये महावीर भगवान का मंदिर है, ये पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, ये सुंदर भगवान का मंदिर है, फिर सुखदेव भगवान का मंदिर है। लेकिन वो तो वितराग है, उनको मंदिर से लेना देना है। कोई प्रणाम करो तो करो, कोई पूजा करो तो करो, नहीं करो तो
नहीं करो,
तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रागी को अच्छा लगता है कि देखो मेरा मान सम्मान बढ़ाता है, वो होता है। सर्वज्ञ का सम्यक प्रकार से वर्णन कैसे है कि अनंत स्वसंवेदन पूर्वक परिपूर्ण अंतर्मुखता। कितनी अंतर्मुखता? परिपूर्ण अंतर्मुखता। अनंत तो ये जो प्रकार है, ये सम्यक प्रकार से भगवान का वर्णन है। ये जिनेन्द्र दर्शन की सही पद्धति है, सम्यक पद्धति यही है। उत्पन्न होना चाहिए और उसका आविर्भाव होकर के उसकी तारतम्यता बढ़नी चाहिए। इसलिए मुमुक्षुओं के लिए वो भेद ज्ञान का निमित्त है और ज्ञानियों के लिए वो ध्यान का निमित्त है। ज्ञानी को ध्यान लग जाता है, क्यों? कि वहां भी परिपूर्ण अंतर्मुखता रूप ध्यान है, तो उनका ध्यान देकर के उनको ध्यान आविर्भूत होता है ज्ञानी को। इसलिए इसका बहुत महत्व है। शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को भेद ज्ञान पूर्वक भिन्न एकांत शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का वेदन होना वह शास्त्र स्वाध्याय का सम्यक फल है। शास्त्र स्वाध्याय को एक सूक्ष्म बढ़ाने की चीज नहीं है। ऐसे बढ़ जाता है स्वाध्याय करने वाले को, सहज बढ़ जाता है, लेकिन वो उसका कोई महत्व मोक्ष मार्ग में नहीं है या अध्यात्म के प्रकरण में इसका कोई महत्व नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को भेद ज्ञान पूर्वक, क्यों? कि शास्त्र स्वाध्याय का फल क्या है? कि भिन्न ज्ञान में आत्मा का अनुभव करना, वही शास्त्र स्वाध्याय का फल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शास्त्र स्वाध्याय बेकार जाएगा और कुछ शोषण बढ़ेगा, तो दृढ़ दृष्टि नहीं होने के कारण से वो अभिनिवेश का कारण बनेगा। शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को भेद ज्ञान पूर्वक भिन्न एकांत शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का वेदन होना वही शास्त्र स्वाध्याय का सम्यक फल है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को चाहिए कि हम किसी लक्ष्य से स्वाध्याय करें, और जहां तक हमको सम्यक फल प्राप्त नहीं होता है वहां तक हमारे शास्त्र स्वाध्याय कहीं दूसरे
ब्रांच में तो नहीं चला जाता, उसके लिए हम जागृत रहे हैं और संवेदन के भिन्न ज्ञान में आत्मा के ज्ञान वेदन के दिशा में हमारा प्रयास स्वाध्याय के दौरान हमारा प्रयास ऐसा ही होता है या नहीं होता है वो हम हमेशा देखते रहे, इसके लिए हमारी जागृति में है। जिनागम के सर्व कथन में अथवा ज्ञानी पुरुष के श्रीमुख से प्रवाहित सर्व वचन में आत्मकल्याण का आशय समाहित है। समाहित मैंने समावेश पाया हुआ है। जिनागम के सर्व कथन में भी यही आशय है और ज्ञानियों के वचनामृत में भी वही आशय है और सभी वचनों का केंद्र स्थान भी वही है, सेंटर पॉइंट वही है। जीव का आत्मकल्याण कैसे हो, चाहे किसी भी योग्यता वाला हो, उसको आत्मकल्याण की ओर ले जाता है। चाहे एक परमाणु का प्रतिपादन किया हो, चाहे 14 ब्रह्मांड का प्रतिपादन किया हो, चाहे 12वें गुणस्थान की ध्यान का प्रतिपादन किया हो, चाहे ध्यान में मेषोन्मेष कितना होता है इसका प्रतिपादन किया हो, छोटी सी क्रिया है वो, नेत्र का स्थिरत्व होता है वहां से लेकर के परिणाम की पूर्ण स्थिरता यथा क्या चारित्र संपूर्ण ध्यान होता है। सभी प्रकार का कथन प्रतिपादन का आशय जीव का आत्मकल्याण होना वही है, दूसरा कोई आशय है ही नहीं। कोई बात लिया है, एक परमाणु से लेकर 14 ब्रह्मांड का विवरण और मेषोन्मेष की क्रिया से लेकर शुक्ल ध्यान की सभी बातें एक आत्मकल्याण होने के लिए कही गई है। अतः ये वचन सम्यकता है, अतः ये वचन सम्यकता है। सम्यकता का रूप दिखते हैं, देखना है कहीं भी वचन में भी ये वचन सम्यकता है। जिसका आधार, ये वचन का आधार कौन है? अच्छा, मैंने बैकग्राउंड पार्श्वभूमि, जिसका आधार कथन करने वाले की परिणमन की सम्यकता है। क्यों उसको वचन सम्यकता ऐसा विशेषण लागू पड़ता है, क्यों? तो परिणमन की सम्यकता में से वो निकला है, इसलिए उसको वचन सम्यकता बोली जाती है। ऐसा अदर से लिखी हुई बात नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि ये सब चलता है वो अदर से लिखित में और मफतलाल की से ऐसा नहीं चलता है। मैंने आचार्यों ने अनुभव में कलम डुबो डुबो के लिखा है। क्यों? तो 6-7 गुणस्थान में झूलते थे तो लिखते लिखते अंतर अनुभव में चले जाते थे, लिखते लिखते अंतर अनुभव में चले जाते थे और फिर भी लिंक नहीं टूटती थी उनकी। जैन आचार्यों की शास्त्र लेखन की पद्धति देखो, वो भी एक अनूठी परिस्थित पद्धति है और सामान्य जनों से बिल्कुल विलक्षण प्रकार के हैं। सामान्य जन क्या है, अच्छे अच्छे विद्वान हो गए, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है। उतना सामर्थ्य होता है उनके क्षोभसम में और उनकी लेखनी में, और ये सामर्थ्य का बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है, इसका स्वानुभव है, स्वानुभूति का प्रकाश इसमें दिखता है, झलकता है। इसलिए वचन सम्यक्ता है। ऐसा है कि सामान्य प्रकार से अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी जब लेक्चर देते हैं तो कुछ प्री प्लानिंग करते जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ विद्वान ऐसे करते हैं, पॉइंट्स नोट आउट कर लेते हैं और कुछ ये रखना उतना वो रखना उतना वो रखना उतना वो रखना। ज्ञानियों को ऐसा करना नहीं पड़ता, उसके अंतर परिणमन से जब जो निकल गया वो निकल गया और वो ही सम्यक है, वो वचन सम्यकता है इसका, तो उसको प्री प्लानिंग में नहीं जाना पड़ता। और प्री प्लानिंग की जो कृत्रिमता है वो वहां नहीं हुआ है, सहजता का उसमें दर्शन होता है। एक बात कही, इसके पीछे दूसरी बात कहने के लिए उसको थिंकिंग नहीं करना पड़ता है कि हमने ये बात कही अब वो बात कहेंगे, वो बात नहीं है, स्वयं प्रभावित होता है, उसका विचार के फ्लो भी होता है और उसके वाणी का भी फ्लो होता है, तद अनुसार विचार के फ्लो के अनुसार वाणी का भी फ्लो आता है और वो दोनों सहज है। गुरुदेव हमारे कभी कभी प्रवचन करते करते ऐसी बात करते थे कि अरे आज तो ऐसा प्रवचन निकल गया कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा निकलेगा। जब खुद के बियॉन्ड इमेजिनेशन खुद का ही प्रवचन प्रवाह निकलता है तो दूसरे का इमेजिनेशन उसमें कहां से पता लगेगा, दूसरे का इमेजिनेशन का पता ही कहां से लगेगा। खुद को आश्चर्य होता था कभी कभी, ये बात कैसे निकल गई, हमने कभी सोची नहीं थी। उसी वक्त उन अंदर में से बाहर आ जाती है, आगे पीछे सोची भी नहीं हो, उसका विचार उपयोग चला ही नहीं हो। लेकिन ज्ञानियों को 12 अंक की या केवल ज्ञान की भी लब्धि होती है पर वो लब्धि में से उपयोग होता है। बहुभाग तो लोगों को लब्ध का उपयोग की लब्धि होती है तो जो बात समझ में आती है वो लब्ध में जाती है, उसको लब्धि कहते हैं। लेकिन ये चैतन्य का चमत्कार है कि उपयोग बाद में होता है, लब्धि पहले आ जाती है। गुरुदेव कहते थे कि सम्यक दर्शन होते ही केवल ज्ञान की लब्धि हो जाती है और जो न्याय 12 अंग की रचना करने वाले गंधर्वदेव निकालते हैं वो न्याय सम्यक दर्शन दृष्टि निकाल सकता है, तो तुम अच्छा निकाल सकता है तो सकता है, अगर उपयोग चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन लब्धि है इसके पास, उपयोग हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये चैतन्य का चमत्कार है। बहुत से बार बहुत से बार हमने सुना
है,
क्योंकि गुरुदेव मूल में इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जो गुरुदेव उस जमाने में स्कूल में पढ़ने को गए तब तो 7 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई थी, 7 चौपड़ी ये बोलते, क्या 7 स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, 7 चौपड़ी पढ़ लिया। फिर जो जिसको पास कुछ नहीं है वो सर्विस कर लेता है, और जिसके पास पिताजी की दुकान दुकान वगैरह है तो दुकान में बैठ जाता है, व्यवसाय में लग जाता है। तो वो भी व्यवसाय में लग गए थे, 7 चौपड़ी पढ़ करके वो भी धंधे में लग गए थे। 13 साल से वो दुकान पर बैठते थे, 20 साल तक बैठे उम्र में, फिर 21 साल की उम्र में दीक्षा ले ली स्थानक वासी संप्रदाय में, क्योंकि जन्म स्थानक वासी संप्रदाय में था। और दुकान पे भी वो स्वाध्याय करते थे ज़्यादा, तो लोग उनको भगत ही कहते थे, ये तो भगत है, बैठे बैठे वही करता है। जब भी फुर्सत मिले किताब रख लेते थे, स्वाध्याय करते रहते थे। उन्होंने निर्णय कर लिया था बीच में 15 साल की उम्र में कि अपने को तो शादी करनी नहीं है, और कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो उस गुरु के पास दीक्षा अंगीकार कर लेंगे और अपना आत्मकल्याण करेंगे। तो आत्मकल्याण करने का हेतु बचपन से ही था, तो पढ़ाई तो थी नहीं उतनी, तो विद्वत्ता तो पढ़ाई से आती है, पढ़ते ही पंडित हो, पंडित जो होता है वो पढ़ते पढ़ते हो जाता है, वो कोई जन्म से पैदा नहीं होता, पढ़ते पढ़ते पंडित हो जाता है। तो वो पंडिताई तो थी नहीं शुरू में, फिर जब शास्त्र पढ़ते गए और ज्ञान भी हो गया तो अंदर से बहुत बात निकली, आत्मा में से बहुत बात निकली। आज भी हम चैलेंज कर सकते हैं कि कितनी बातें जो गुरुदेव ने खोली है वो अभी तक किसी ने नहीं खोली है। विद्वानों ने तो नहीं खोली है, दूसरे ज्ञानियों ने भी नहीं खोली है, इतनी सूक्ष्मता आई थी। इसका एक दृष्टांत हम दे सकते हैं, नियम सार की 15 गाथा में से कारण शुद्ध पर्याय का विषय जो गुरुदेव ने खोला है वो आज तक कहीं कोई शास्त्र में कहीं और जगह दिखने में नहीं आता। कृपालु देव के 2-3 वचनों में इसका संकेत है, तो भी गुरुदेव ने बतलाया तब पता चला, दूसरे को मालूम नहीं है कि कृपालु देव ने भी कारण शुद्ध पर्याय का कोई बात का संकेत कर दिया है, लेकिन उन्होंने 1-2 जगह बताया कि देखो इसमें ये बात है गर्भित है। तो कारण शुद्ध पर्याय का विषय कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है और बहुत सूक्ष्म विषय है, आज भी हमारे अच्छे अच्छे विद्वान उसमें ठीक तरह से नहीं समझ पाते, उतना सूक्ष्म विषय है। गुरुदेव ने तो बिना गुरु और बिना कोई विद्वान से कोई समझे हुए कई बातें खोली है। एक समय सार की 308, 9, 10, 11, 4 गाथा एक साथ है टीका में, उसमें कर्म नियमित शब्द पड़ा है संस्कृत में, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, जिसका अनुवाद करने वाले विद्वान ने क्रमबद्ध ऐसा शब्द लिखा। तो क्रमबद्ध में से 150 न्याय निकाले, कितने करीब 150 न्याय निकाले, एक किताब उसका छपा है क्रमबद्ध पर्याय, एक शब्द में से एक शास्त्र का जन्म हो गया, एक पूरा किताब बन गया। कहाँ से निकलता है, आत्मा में से निकलता है। तो आगम सब कहाँ से निकले, आत्मा में से निकले, इसलिए जिसके वचन से आगम बनते हैं
वही ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं ही जीवंत जिनागम है, जीवंत जिनागम है, सजीवन मूर्ति है ना, इसलिए। और इसके एक वचन में अनंत आगम भरा है, एक शब्द में अनंत आगम भरा है, वो बात कृपाल देव ने कही है। इसलिए यानी जो बात कहते हैं वो आगम में मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसी शास्त्र संगना अपराध है। क्या है? इसको बोलते हैं शास्त्र संगना। जैसे लोक संगना होती है, ओग संगना होती है, एक तीसरी शास्त्र संगना होती है, तो वो जो ज्ञानियों को वचन में शंका पैदा करने वाली चीज है। ज्ञानी ने तो कहा शास्त्र में तो है ही नहीं, देखा नहीं हमने, शास्त्र में मिले तो हम माने, ये शास्त्र संगना है, ये नुकसान का कारण बनती है। तो हम कहते हैं वही शास्त्र है, ऐसा मान लेना, शास्त्र में शायद मिलेगी हमारी कही हुई बात, अगर नहीं मिले तो उसी को ही शास्त्र समझ लेना। लेकिन आपको हमको कुछ बात कहनी, एक दासी भाई को पत्र लिखा है, जज थे मुरबी के, तो हमको कुछ बात कहनी है, लेकिन हमारी शर्त है कि ऐसा ऐसा नहीं हो तो बात कहें, वरना नहीं कहेंगे। उसमें वो बात लिखी है कि बात सुनने के पश्चात शास्त्र संज्ञा से शास्त्र में खोजने की वृत्ति नहीं होवे तो ऐसे ऐसे कई शर्त रखी है, पांच सात शर्त, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो बात बताना चाहते हैं। बात ऐसी होती है, शास्त्र जैसे ऑथेंटिक होता है वैसे ज्ञानी के वचन भी ऑथेंटिक मानना चाहिए। यह सम्यक्त्व का प्रभाव है कि सम्यक्त्व किसी भी प्रकार का कथन करता है जो पारमार्थिक हेतु वश होता है। वो कोई भी कथन करेगा तो उसमें पारमार्थिक हेतु हमेशा हमेशा रहेगा। ऐसा क्यों? कि उसको जो सम्यक तो प्रकट हुआ है इसका वो प्रभाव है, तो इसकी वाणी में ये प्रभाव आए बिना नहीं रहता। यह सम्यक्त्व का प्रभाव है कि सम्यक्त्व किसी भी प्रकार का कथन करता है जो पारमार्थिक हेतुवश करता है। और कृपालु देव में तो एक बहुत विशिष्टता, बड़ी विशेषता थी कि कोई एक परमाणु की बात करेंगे ना तो वहां से वो परमार्थ निकाल देंगे। और हमने कल दिखाया था 679 पत्र में, एक समय एक परमाणु एक प्रदेश, इसकी व्याख्या, इसका वर्णन जिनागम में आता है। किसी भी विश्व के किसी संप्रदाय के धर्मशास्त्र में एक समय एक परमाणु और एक प्रदेश की बात है ही नहीं, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक हुआ। तो ये साइंस की बात में से परमार्थ निकाला उन्होंने कि ये कौन जानता है, जो तो सर्वज्ञ वितराग है वो ही जानता है। और सर्वज्ञ वितराग कौन है? कि जिन्होंने सर्व कषायों का अभाव किया है वो है। तो परमार्थ निकाला उसमें से, सर्व कषाय का अभाव की बात वहां से निकाली। कैसे मोड़ लेते हैं, एक परमाणु की बात करते करते विषय प्रवेश कहां हो जाता है देखो तो शायद आधा विषय प्रवेश कर लेते हैं। बहुत विचक्षण थे गुरुदेव, तो कहते थे कि पिछले सैकड़ों साल में ऐसा महात्मा हमने नहीं देखा, ऐसा कहते थे। पिछले सैकड़ों सालों में ऐसा ज्ञानी महात्मा हमने नहीं देखा, ऐसा कहते थे। क्यों? कि एक तो जवान छोटी सी उम्र, और वो तो चार चौपड़ी पड़े हुए थे, कितने या सात एक साल में पढ़ लिया था, शुरू से बहुत तेज क्षोभ था, तो एक ही साल में सातों स्टैंडर्ड का परीक्षा दे दिया, और उसको टीचर और एजुकेशनल इंस्पेक्टर आवे, उसको डिप्टी साहब कहते, डेप्यूटी एजुकेशनल इंस्पेक्टर, तो हमारे जनों बोलते डेप्टी साहब आए हैं, तो डिप्टी को बोलना पड़ता है कि भाई रायचंद भाई तुम कुछ लिखते हो या काव्य बनाते हो तो समझाओ तो सही कि उसमें क्या बात है। उनके शिक्षक उनके हृदय वाले उनसे समझने का कोशिश करते थे। उतनी मति बहुत निर्मल और तेज थी शुरू से ही, ज्ञान जैसा आ गई तो सोने में सुगंध हो गया। और इस कारण से किसी भी मुद्दे पर अधिक वजन देता है, परंतु संतुलितता खोने की खोते नहीं, संतुलितता खोते नहीं। यानी कभी वजन देता है तो दूसरे को एकांत लगता है कि देखो ये निश्चय की कितनी जोर से बात करता है, वो एकांत निश्चय हो गया। लेकिन जो अपने विषय में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको ये अधिकार है। जैसे ये बाइक का रेस लगता है, टीवी में देखते होंगे तो यार रेस में क्या होता है, उनको ऐसे ऐसे सीधा रास्ता नहीं देते, पर स्पीड से जाना है, सबसे पहले निकलना है, तो वो स्पीड में टर्न लेगा, उतना टर्न लेगा कि उसकी बाइक पूरी झुक जाएगी। कभी ऐसा लगता है कि वो जमीन को टच हो गया, लेकिन जमीन का टच होने से तो गिर जाएगा, थोड़ा सा बाकी रह जाता है, उतनी झुकाता है बाइक को फिर भी गिरता नहीं है, संतुलन उसका बना रहता है, ये इसकी एक्सपर्टनेस है, उस विषय में वो निपुण है। ऐसे ज्ञानी भी कुंदकुंद आचार्य नियम सार के 50 गाथा में ये बोलेंगे कि क्षायिक पर्याय भी परद्रव्य है, केवल ज्ञान भी परद्रव्य हो गया, परमानंद भी परद्रव्य हो गया, सिद्ध दशा भी परद्रव्य होगी, परद्रव्यम परभावम हेयम इति हेय बोल देंगे, उनको बोलने का अधिकार है। कितना भी वजन देंगे वो संतुलन खोते नहीं, और अज्ञानी बात बात में संतुलन खो देते हैं, सामान्य बात में भी खो देंगे। ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। क्या है, किस कारण से? ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। सम्यक्त्व में के अभाव में वही कथन करने वाला एकांती है, और सम्यक्त्व के सद्भाव में वही कथन करने वाला अनेकांत रूप संतुलन को बराबर रख लेता है, होता नहीं है संतुलन को। अतः यहाँ सम्यक एकांत, अतः यहाँ सम्यक एकांत वही सम्यक अनेकांत है जो कृपालु देव के वचन में है कि सम्यक अनेकांत पर सम्यक एकांत वा निज पत्नी प्राप्ति अर्थे उपकारी है, कृपालु देव का वचन है। और सुगानी जी ने उसको दोहराया कि ये वचन हमको बहुत प्रिय है, कृपालु देव का ये वचन हमको बहुत प्रिय है। क्यों? कि इस वचन में कृपालु देव की सम्यकता का दर्शन किया उन्होंने। सम्यक एकांत में भी सम्यक अनेकांत है, क्योंकि निज पद की प्राप्ति का हेतु वहां है, कारण पड़ा है वहां। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व के दृष्टिकोण से एकांत अनेकांत का भी उसमें इसका क्या रूप है, स्वरूप है, ये थोड़ा बहुत इसमें रखा है। आगे का जो विषय है कल के स्वाध्याय में।